सुमन जी की तबीयत बिगड़ने पर मित्तल और गोयंका फैमिली ने मिलकर शगुन और अनुभव की शादी जल्दबाजी में करने का डिसीजन लिया। उनके पीछे से सारी जिम्मेदारी नवीन और रचना संभाल रहे थे। नवीन ने कॉल करके शगुन को न्यूयॉर्क जाने की बात बता दी थी। अब वो अनुभव को कॉल करने जा रहे थे। शगुन को तो उन्होंने जैसे तैसे समझा दिया था और अब वो अनुभव से बात करने जा रहे थे। नमस्ते अंकल, अनुभव ने उनका कॉल पिक करते ही कहा। आपने मुझे कॉल किया? पहले आपने कभी मुझे कॉल नहीं किया, सब ठीक है ना? आई विश कि मैं तुम्हें बोल पाता सब ठीक है। अनुभव, सुमन आंटी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। हालांकि उनकी सर्जरी हो गई है, फिर भी रिकवरी के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, अपना सामान पैक कर लो। मैंने शगुन को भी बोल दिया है। अपने साथ में अपने फ्रेंड गतिक को भी ले लेना। मैंने तुम तीनों की टिकट बुक कर दी है, आज रात की फ़्लाइट है, नवीन जी ने गंभीर स्वर में कहा। उनकी बात सुनकर अनुभव घबरा गया। उसने उसी लहजे में कहा, अंकल दादी की तबीयत ठीक है ना? आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? अनुभव ने हिचकिचाते हुए पूछा। अरे नहीं बेटा, वो बिल्कुल ठीक हैं, बस तुम सबसे मिलना चाहती थी। तुम सब उनके पास आओगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, नवीन जी ने बताया। ठीक है, फिर आप मुझे टिकट्स मेल कर दीजिएगा, हम तीनों आ जाएंगे, अनुभव ने जवाब दिया। उसे ये सब काफ़ी अजीब लग रहा था तो उसने कन्फर्म करने के लिए प्रकाश को कॉल किया। वहाँ उसे सुमन जी की तबीयत और सर्जरी के बारे में पता चला तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और गतिक के साथ अपनी पैकिंग करने लगा। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क जाने से पहले नवीन और रचना मित्तल विला में आए हुए थे। उनके साथ मीरा, अंशिका और खुशी भी जाने वाली थीं। किसने सोचा था इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद एमरजेंसी में इन दोनों की शादी करनी पड़ेगी। बच्चों ने भी अपने लिए काफ़ी कुछ प्लान किया होगा ना, मीरा मायूसी के साथ बोली। मम्मी जी ठीक हो जाएं उसके बाद ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी थ्रो कर देंगे, अभी के लिए उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना ज़रूरी है, नवीन ने जवाब दिया। बड़े आपस में बात कर रहे थे तभी अंशिका और खुशी ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो दोनों इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थीं कि अनुभव और शगुन से उनकी शादी के बारे में छुपाया जा रहा था। अंशिका ने उन्हें समझाते हुए कहा, मॉम अंकल आपने जो भी डिसीजन लिया है उसमें हम बीच में नहीं पड़ना चाहते, पर उन दोनों को झूठ बोलना गलत होगा, आप उन्हें सच बोलकर भी तो बुला सकते हो। हाँ, झूठ बोलने पर कहीं उन दोनों ने शादी से मना कर दिया तो, खुशी ने उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। खुशी की बात सुनकर सब उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देख रहे थे। मीरा ने उसे चुप कराते हुए कहा, तुम बच्चे भी ना कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, वो दोनों अपनी शादी से खुश हैं। हाँ, एक बार के लिए दोनों को शौक लगेगा, बट मम्मी जी की तबीयत के बारे में पता चलेगा तो वो सब समझ जाएंगे। चलो अब अपनी अपनी पैकिंग कर लो, फिर मत कहना कि ये रह गया वो रह गया, वहाँ शॉपिंग करने का मौका नहीं मिलेगा, रचना ने बहाने से उन दोनों को वहाँ से भेज दिया। अंशिका और खुशी दोनों अंदर आ गई थीं। वो पैकिंग करने के बजाय कमरे में परेशानी में टहल रही थीं। हमारे घर के बड़े आजकल कुछ ज़्यादा ही फास्ट ट्रैक नहीं हो गए दी? 2 महीने में लड़की देखने, सगाई करना और अब शादी भी, इतनी जल्दबाजी तो लव मैरिज में भी नहीं होती, खुशी टहलते हुए बोली। बात तो तेरी सही है छोटी, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। ये तो शुक्र मनाओ अनुभव भैया और शगुन भाभी ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, वरना घर वाले उन दोनों को कन्विंस करने के लिए अलग से एफर्ट्स डालते, अंशिका ने जवाब दिया। हाँ सही कहा। अच्छा दी, आपको क्या लगता है हमें उन दोनों को बता देना चाहिए, खुशी ने अंशिका के पास रुककर पूछा। उसकी बात सुनकर अंशिका भी टहलते हुए रुक गई। वो सोचते हुए अंदाज में बोली, हाँ बता तो देना चाहिए, पर मॉम या घर वालों में से किसी को पता चला तो हमें डांट पड़ेगी, कहीं हमारे बताने से अनुभव भैया या शगुन भाभी में से किसी ने आने से मना कर दिया तो फिर सारी बात हम दोनों पर आ जाएगी। तुझे तो फिर भी बच्ची समझकर कुछ नहीं कहेंगे, पर मुझे तो वो जिंदा निकल जाएंगे। फिर रहने देते हैं दी, मॉम डैड को तो फिर भी समझाना आसान होता है, लेकिन बड़ी मॉम गुस्सा करेगी, खुशी ने अपनी तरफ से ना कह दी, जिस पर अंशिका ने भी सहमति जताई। सही कह रही है तू, चल अब जो भी होगा देखा जाएगा, हम अपनी पैकिंग करते हैं, वरना जल्दबाजी की शादी के चक्कर में थोड़ा बहुत भी एंजॉयमेंट नहीं होगा, अंशिका ने खुशी को चीयर करने के लिए कहा। दोनों वहां बैठकर अपनी अपनी पैकिंग करने लगी। वहीं नवीन और रचना ने भी मीरा के साथ मिलकर काफी हद तक चीजें हैंडल कर ली थी। लगभग शाम के 7 बजे के करीब उन लोगों ने न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी। अनुभव, शगुन और गतिक की फ्लाइट रात के 9 बजे की थी। डिनर के बाद वो तीनों एयरपोर्ट पर थे। फ्लाइट टेक ऑफ होने के अनाउंसमेंट के साथ ही तीनों फ्लाइट के बिजनेस क्लास एरिया में चले गए। वहां वो तीनों अकेले थे। शगुन और अनुभव ने अपनी अपनी पसंद के स्नैक्स मंगाए और मजे से बैठकर खा रहे थे। अच्छा तुमने अपने बॉयफ्रेंड को क्या बोला, उसने तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी थी क्या, अनुभव ने कहा। उसके हाथ में कॉफी का ग्लास था। मैंने उसे बोला कि मेरे किसी फैमिली मेंबर की डेस्टिनेशन वेडिंग है, इस वजह से मुझे न्यूयॉर्क जाना पड़ रहा है। उसने बहुत आसानी से यकीन कर लिया। मैंने अब से पहले उसे कभी झूठ नहीं बोला तो उसे मुझ पर यकीन करने में दिक्कत नहीं होती, पर हाँ
अंदर से बहुत बुरा लगता है, शगुन ने जवाब दिया। फिर उसने अनुभव से पूछा, अच्छा तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बहाना लगाया?
मुझे कोई भी बहाना लगाने की क्या जरूरत है? अरे मेरी दादी बीमार है तो मैं उनसे मिलने नहीं जा सकता क्या?
हाँ लेकिन आजकल मैं ऑफिस से कुछ ज्यादा ही छुट्टी लेने लगा हूँ, इस वजह से उन्हें डाउट होने लगा है।
कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की बात है, फिर वहां से भी छुटकारा मिल जाएगा।
अरे फिर तो मैं सीईओ की कुर्सी पर बैठूंगा, हमेशा ये छोटी मोटी जॉब थोड़ी ना करनी है, अनुभव ने हंसकर जवाब दिया। उसने और शगुन ने हाईफाई की। फिर उन दोनों का ध्यान गतिक की तरफ गया, जो बहुत गौर से कुछ सोच रहा था। शगुन ने इशारे से अनुभव को गतिक से बात करने के लिए कहा। अनुभव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आई नो तू पहली बार न्यूयॉर्क जा रहा है, फ्लाइट में भी पहली बार बैठा है, पर इतने गौर से क्या सोच रहा है? तुम्हें तो यहाँ मजे करने चाहिए, पर तुम हो कि टेंशन में नजर आ रहे हो।
हाँ गौर करने वाली बात है, जिन्हें टेंशन होनी चाहिए वो तो मजे से कॉफी और स्नैक्स एंजॉय कर रहे हैं, और मैं खामखा ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ, गतिक ने जवाब दिया।
किसे टेंशन होनी चाहिए? शगुन ने हैरानी से पूछा।
तुम दोनों को और किसको? गतिक ने जवाब में कहा। फिर वो गंभीर स्वर में बोला, तुम दोनों जितने देर से आने बनते हो उतने हो नहीं, क्या तुम दोनों को जरा भी अतल नहीं है? थोड़ा सोचो और गौर करो कि तुम दोनों को ही क्यों बुलाया है और साथ में मुझे क्यों? दादी जब ठीक हैं और उन्हें इंडिया ही आना है तो तुम दोनों को इतनी दूर क्यों बुलाया? मुझे ऐसा लग रहा है ये तुम दोनों को शादी करने के लिए वहां बुला रहे हैं। जैसे ही गतिक ने अपनी बात खत्म की, अनुभव और शगुन जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए हाईफाई की। अनुभव ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, बस कर यार और मत हंसा, मेरा पेट दर्द करने लग गया। तू कुछ ज्यादा ही सोचता है, लगता है आजकल टीवी शो ज्यादा देखने लग गया है।
हाँ मुझे भी यही लग रहा है, ऐसे कैसे शादी कर देंगे? और शादी करेंगे तो हमसे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, हमारे यहाँ जल्दी में शादी नहीं होती है, सब ग्रैंड वेडिंग प्लान करके बैठे हैं। तुम सच में बहुत मासूम हो गतिक, कहकर शगुन भी गतिक का मजाक उड़ाने लग गई।
उन दोनों की बातें सुनकर गतिक ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, उड़ा लो बेटा जितना मजाक उड़ाना है, देखना रोते हुए दोनों मेरे पास ही आओगे और कोई ना कोई सोल्यूशन मांगोगे। हाँ ये सोल्यूशन मांगने के लिए तुम्हारे पास आ सकता है, लेकिन सपने में भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे पास आकर ऐसा कुछ करने वाली हूँ, कुछ भी बोलते हो, शगुन हंसते हुए बोली। तुम इसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, इसे मजाक करने की आदत है, ये प्रैंक भी बहुत अच्छे करता है, डिस्टेंस काफी लंबा है, चलो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं, अनुभव ने कहा और आंखें बंद करके कंफर्टेबल होकर लेट गया। शगुन भी आराम कर रही थी, वहीं गतिक उन दोनों के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, प्रैंक तो तुम दोनों के साथ होने जा रहा है, जो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें दादी की खराब तबीयत के बहाने शादी करने के लिए न्यूयॉर्क बुला लिया। अगर दोनों शादी करके वापस नहीं लौटे तो मेरा नाम भी गतिक वर्मा नहीं। गतिक ने भी आगे ज्यादा नहीं सोचा और वो भी आराम करने लगा। उन तीनों की फ्लाइट लगभग 1 बजे के करीब लैंड की। वहां से गतिक होटल के लिए तो अनुभव और शगुन सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वो दोनों सुमन जी से पहले मिलना चाहते थे। वहां हॉस्पिटल में सुमन जी के पास प्रकाश के अलावा और कोई नहीं था। आकाश और वाणी अरेंजमेंट करने में लगे थे। जैसे ही प्रकाश ने उन दोनों को देखा तो उसके चेहरे पर उनकी स्माइल थी। मम्मी तुम दोनों को बहुत याद कर रही थी, तुम्हें यहाँ देखेगी तो बहुत खुश होगी, प्रकाश ने अनुभव के गले लगकर कहा। उसके बाद शगुन ने उनके पैर छुए और कहा, वो ठीक तो है ना, हमें उनसे मिलने की परमिशन मिल जाएगी ना? अचानक उनकी तबीयत खराब होने का सुना तो बस घबरा गए। हाँ उनकी कंडीशन अभी के लिए स्टेबल है, चलो मैं तुम दोनों को उनके रूम तक लेकर चलता हूँ, डॉक्टर ने विजिटर्स अलाउ कर रखे हैं, प्रकाश ने कहा और अनुभव और शगुन को वहां से सुमन जी के रूम तक लेकर गया। उन दोनों को वहीं छोड़कर प्रकाश वहां से चले गए। वहीं सुमन जी ने उन दोनों को देखा तो वो वाकई काफी खुश हुई। क्या दादी, आपने तो मेरी एब्सेंस में न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ ली, मेरी इतनी याद आ रही थी तो मुझे मुंबई बुला लेती, अनुभव ने नम आंखों से कहा, जिस पर सुमन जी ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। डॉक्टर ने अभी उन्हें ज्यादा बोलने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मेरा बस चलता तो तुझे कभी खुद से दूर जाने ही नहीं देती। फिर उन्होंने शगुन की तरफ देखा और प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर कहा, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना। शगुन ने मुस्कुराकर उनकी बात पर हामी भरी। वो दोनों काफी देर तक वहां बैठे रहे। लगभग शाम के करीब प्रकाश ने उन्हें होटल जाने को कहा, वो उनके साथ हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में था। तुम दोनों काफी देर से यहाँ हो, थक गए होगे, आज की रात आराम कर लो, आगे आने वाले 2 दिन वैसे भी तुम दोनों के लिए थकावट भरे होने वाले हैं, प्रकाश ने कहा। उनकी बात सुनकर अनुभव और शगुन ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा और फिर प्रकाश की तरफ। वो दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि यहाँ उनकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। क्या हम कल ही वापस इंडिया के लिए निकल रहे हैं, जो आने वाले 2 दिन थकावट भरे रहने वाले हैं चाचू, अनुभव ने हिचकते हुए पूछा। अरे नहीं अभी तो 1 वीक के लिए यहीं पर हैं। वैसे तो ये न्यूज भाई साहब बताने वाले थे, लेकिन तुम दोनों की परेशान शक्ल देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। एक्चुअली मम्मी जी चाहती थी कि तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी हो जाए। आई नो तुम दोनों के बहुत प्लान्स रहे होंगे, लेकिन मम्मी की विश भी इम्पोर्टेंस रखती है। तुम दोनों रिसेप्शन में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेना, पर शादी हम यहीं करने वाले हैं। शादी ज्यादा ग्रैंड नहीं रहेगी, लेकिन 2 दिनों में सारी रस्में अच्छे से करेंगे।
प्रकाश एक्साइटेड होकर उन्हें सब बता रहे थे। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अनुभव बेहोश होकर उनके कंधे पर गिर गया, तो वहीं शगुन के भी होश उड़े हुए थे।